आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और जब भी कोई भारतीय अपनी मेहनत, संस्कृति और संस्कारों के साथ विदेश की धरती पर पहचान बनाता है, तो वे केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करता है। ऐसे ही लाखों भारतीयों को सम्मान देने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भले ही प्रवासी भारतीय भौगोलिक रूप से भारत से दूर हों, लेकिन उनका दिल, सोच और योगदान हमेशा भारत से जुड़ा रहता है। ये दिवस भारत और विश्व के बीच सेतु बने प्रवासी भारतीयों की सफलता, संघर्ष और समर्पण का उत्सव है। तो आज NRI डे पर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कुछ ऐसे प्रवासियों से जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज में अपना योगदान दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके योगदान से ऑस्ट्रेलियाई समाज को एक नया आकार मिला है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े सनी दुग्गल, जिन्हें इस साल विक्टोरियन मल्टीकल्चरल अवार्ड्स की सूची में शामिल किया गया है।
मुझे यहाँ तकरीबन 36 साल हो गए जस्ट एज अ माइग्रेंट फैमिली, और 30 साल से ही समाज की सेवा में लगे हैं। निरंकारी मिशन में भी सेवा करता हूँ और बाहर समाज में भी काफी चीजें हैं जिनमें मैं एक्टिवेट हूँ, क्योंकि मेरा डे इन डे आउट यही रहता है। समाज के हर संप्रदाय में जाता हूँ, कल्चर्स में जाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे इतना हैवीली इंगेजमेंट करने को मिलती है, लोगों के साथ काम करने को मिलता है, लोगों के साथ सीखने को मिलता है, सारा कुछ करने को मिलता है। तो उस स्पेस में मैं बहुत खुश हूं और काम कर रहा हूं। और अभी जैसे जो हमारे आपातकालीन सिचुएशंस है, COVID-19 था और बुश फायर्स थी, उसमें भी काफी एक्टिवेट होके वॉलंटियर्स के साथ मिलके समाज के कार्यों में जुड़े रहे। और उस दौरान भी एक अवार्ड घोषित हुआ था, मल्टीकल्चर एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में, जो कि विक्टोरियन मल्टीकल्चर कमीशन द्वारा, लेकिन वो ऑनलाइन था क्योंकि कोविड था उस दौरान। तो इस बार मल्टीकल्चर ऑनर रोल में नॉमिनेट हुए। देखिए जी, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ और कहता भी हूँ कि रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट, कि आपका दिखना, आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी वाइज अगर आप इंगेज नहीं है लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मिल नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, नहीं तो वो तो कहते हैं मंडे टू फ्राइडे तो 9 to 5 बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर हम अपने बच्चों को भी बचपन से यहाँ स्कूल्स में या बाहर भी कहीं हो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में ले जाते हैं। अगर आपके पास काम के बाद समय है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। काम के बाहर जाके भी बहुत सी ऐसी गतिविधियां जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि अपने काम के समय में अपने आप को खराब करें, या खराब इन द सेंस भी अपना यू डोंट गेट पेड इफ यू डोंट गो टू वर्क, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ यू कैन गो बियॉन्ड इट और आपके पास समय है और निकाल सकते हैं तो जरूर जाएं। और समाज में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी को करनी चाहिए, इससे नाम आगे आता है, डायस्पोरा का नाम आता है, इंडियन डायस्पोरा हो कुछ भी। और ऐसे ही कल्चर में भी हमारे बच्चे अवेयर रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हम ईद, दिवाली और होली और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे त्योहार और सिखिज्म के मनाते हैं, तो हम गुरु नानक देव जी का बर्थडे, तो हम ये समाज अपना आगे लाके मल्टीकल्चर स्पेस में दिखा रहे हैं और वो हो भी रहा है, उसको और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए।
इसके बाद हमारे साथ जुड़ी रुचि शर्मा, जो कि मेलबर्न में एक लंबे अरसे से साउथ ईस्ट एशियन समुदाय के साथ मिलकर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। उनका मानना है कि कला लोगों को जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है।
कि मैं सेक्रेटरी हूँ ऑस्ट्रेलिया इंडिया सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया की, और हमारे कमेटी मेंबर्स में बिकॉज ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो एनी ऑस्ट्रेलियन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन। ये सबके लिए एक हम वेलकम करते हैं। क्रिएटिव तो हुई है ना, होता है ना कभी कभी, म्यूजिक का शौक है, डांसिंग का शौक है, एक्टिंग का, स्कूल में प्लेज वगैरह करते थे, थिएटर करते थे, तो यहाँ मौका मिल गया। अब आर्टिस्ट मतलब इंटरेस्टिंग है. मुझे लगता है ये इतना आसान एक माध्यम हो सकता है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं. हमें हमेशा लगता है ना जैसे कि इंडोनेशिया अलग हुआ, सुनते थे कि जावा सुमात्रा में हमारे हिंदुइज्म के काफी सारे अवशेष हैं, यू नो, जिससे पता लगता है स्टोरी को. बट जितना रिसर्च करते जा रहे हैं उतने कनेक्शंस बिल्ट हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं. हमारी वंशावली वही है, हमारी एंसेस्ट्री लीनिएज इतनी कनेक्टेड है, इतनी चीजें हम में कॉमन है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो सकता है जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जिनको हार्मनी में इंटरेस्ट है, जो लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आके बात करना चाहते हैं बियॉन्ड रिलीजन. आई थिंक फॉर देम इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. और जितने लोग इससे जुड़ते जाएंगे, हार्मनी ही बनाने का है हमारा तो औचित्य.
इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में एनडीआईएस आवास की सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के रूप में सम्मानित डॉक्टर हिना सिन्हा से भी हमने बातचीत की. दो बच्चों की माँ हिना अपने कठिन बचपन से उबर कर करुणा और सेवा पर आधारित सफल करियर बनाने की प्रेरक यात्रा एसपीएस हिंदी के साथ साझा करती हैं.
ऑस्ट्रेलिया आने का रीजन एक ये भी था क्योंकि मैंने बचपन में चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज झेला है अपने परिवार में ही, और जो काफी दुख भरा और ट्रॉमेटिक इवेंट था. और मुझे उन चीजों से बाहर निकल के एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई जगह पे जाना था जहां पे मैं अपने सपनों को सच कर सकूं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए उन पे काम कर सकूं. तो तब मैं ऑस्ट्रेलिया आई 2015 में. मैंने 2017 में अपना कॉलेज ग्रेजुएशन खत्म किया. तब तक मैं काफी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही थी, जो रेफ्यूजी कम्युनिटीज हैं, जो इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ एंड वेलबींग के प्रोग्राम्स में. शॉर्ट में बताने के लिए कि जो जर्नी है ऑस्ट्रेलिया में मेरी, वो बिल्कुल आम है जैसे सब लोगों की होती है. मैंने शुरुआत रेस्टोरेंट में वेटरसिंग का काम करके चालू किया था. मैंने डोर टू डोर नॉकिंग किया है एनर्जी कंपनीज के लिए. रिटेल में काम किया है. हर एक स्टेप के पहले मुझे ये पता था कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है या मेरे नेक्स्ट 5 steps क्या होने वाले हैं. तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इस मेरी जर्नी में कि एक क्लियर विजन हाँ मेरे पास कि मुझे कहाँ पहुंचना है, जो कि कई बार लोग भूल जाते हैं जब वो छोटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं. पर मेरे लिए हमेशा ये सबसे चीज इम्पोर्टेंट रही थी कि मेरे दिमाग में एक विजन क्लियर था कि मुझे कहाँ रहना है, क्या बनना है और किन लोगों को की मदद करनी है. मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेकअप कॉल था ये जब मुझे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी प्रेगनेंसी के वक्त मुझे फायर किया था, जब मैं 3 हफ्ते बाद यू नो हॉस्पिटल जाने वाली थी अपने डिलीवरी के लिए. और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर शायद उन्होंने मुझे नहीं फायर किया होता और उन्होंने मुझे इस हालत में नहीं छोड़ा होता कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद मैं बिजनेस के सेक्टर में घुसती ही नहीं. मैं कभी अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन खोलती ही नहीं और मैं हमेशा वो 9 to 5 के जॉब में ही रहती. तो पर्सनल लेवल पे कठिनाई डेफिनेटली ये थी पहली कि जब मेरी जॉब चली गई थी मेरे प्रेगनेंसी के वक्त. दूसरी ये कठिनाई जो अक्सर काफी महिलाएं रिलेट कर सकती हैं इस चीज से कि दूसरे लोगों की राय आपके बारे में, आप कैसी माँ हैं, आपके बच्चे चाइल्ड केयर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, आप उनको फॉर्मूला पिला रही हैं या आप उनको ब्रेस्ट मिल्क पिला रही हैं. दूसरे लोगों की राय को लेके अक्सर महिलाएं अपने सपनों को कमरे में बंद करके रख देती हैं, ताला लगा देती हैं और चाबी कहाँ है ये भी भूल जाती हैं. पर मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि कठिनाइयां सिर्फ आपको स्ट्रांग करती हैं, आपका आपको निडर बनाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं कि आप और चीजें ऐसी करें जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर सकते हैं.
बड़े ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेंट्स के रूप में स्कूली छात्र भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं. आइए आपको मिलवाती हूँ शीरीन खन्ना से, जिन्होंने इस साल विक्टोरियन सर्टिफिकेशन ऑफ एजुकेशन फॉर हिंदी से 98 अंक का ATAR प्राप्त किया है.
जी सच बताओ तो मैंने हिंदी का अध्ययन करने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपनी संस्कृति से जुड़ी रहना चाहती थी। हिंदी भाषा में संवाद करने से मुझे भारत के निकट होने का अनुभव हुआ और समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अन्य भारतीय छात्राओं से मिलने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव था कि मैं उनके साथ अपनी मित्रता स्थापित कर पाए। इसके अतिरिक्त जब मैं भारत लौटती हूँ तब मैं अपने नाना नानी तथा अन्य रिश्तेदारों से सहज एवं आत्मीय रूप से संवाद कर पाती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही होती और हिंदी भाषा का अध्ययन नहीं करती तो मैं वापस जाकर बहुत ही अलग सा महसूस होता, मैं उनके साथ संवाद नहीं कर पाती। मुझे यह भी लगता है कि कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया में अपनी मातृभाषा को लेकर बहुत ही लज्जित महसूस करते हैं, जबकि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी कारण मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ कि वह भी अपनी भाषा की पढ़ाई करें। क्योंकि जब 12वीं समाप्त होती है, जैसे ही मैं कक्षा से निकली थी, मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व और संतोष का अनुभव हुआ था, जो एक बहुत ही अनमोल एहसास होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी संस्कृति को समझने और जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक बहुत गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। मैं भविष्य में विक्टोरियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में छोटे छोटे विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाकर कुछ लौटाना चाहती हूँ कि VSL ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जैसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। जब आप एक नए देश में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सामान्य लोग मिल जाए, आप समान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो मुझे VSL ने बहुत कुछ दिया है और मैं वही उसको देना चाहती हूँ।
तो जैसा कि आपने सुना, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दूरी चाहे जितनी भी हो, भारत से जुड़ाव कभी कम नहीं हो सकता। विश्व भर में बसे भारतीय अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बना रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर भारत को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। SBS न्यूज के लिए इस अंश को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।